सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए एक बार में तीन तलाक देने या तलाक बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया है। तीन जज इसे असंवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं दो जज इसके पक्ष में नहीं थे।
माइनॉरिटी जजमेंट, इट हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दीस प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आई पर्सनली थिंक विद रिस्पेक्ट दैट देयर व्यू इज रॉन्ग। It is not in sync with the times. It is not in sync with liberty and dignity of millions of women.
भारत के चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर 6 महीने तक तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के पक्ष में थे और उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में कानून बनाने की मांग की थी। वहीं जस्टिस कुरियन जोसेफ, आर एफ नरीमन और यू ललित ने इसे संविधान का उल्लंघन माना।
In effect, it's 3-2. And that's what the Chief Justice finally said. So the three will prevail. But the reasoning is also important. And I think we should look at the reasoning, even the reasoning of the Chief Justice and one judge who was supporting him may itself be an acceptable reasoning.
Legislation into it.
I don't think now there is no role of legislature.
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए अपने मतभेदों को अलग कर केंद्र की मदद करने को कहा है। अदालत ने उम्मीद जताई कि केंद्र का कानून मुस्लिम संगठनों और शरिया कानून से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखेगा। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस फैसले को लागू करना मुश्किल काम होगा।
In the constitutional bench, there are so many other issues, and it's going to be a great Herculean task to implement this on the ground.
It is a great day for women empowerment. India is changing, and today is occasion for the law minister to say, Supreme Court has done a great job. They have held very clearly and categorically that gender justice is denied by triple talaq. It is arbitrary, it is unreasonable and fair. It is an occasion to celebrate it.
दैनिक हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या आपराधिक साजिश के आरोप में सीबीआई ने आरजेडी नेता शहाबुद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राजदेव रंजन को 2016 में सीवान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी।
की जानकारी मुझे अभी मिली है, सीबीआई के डीएसपी साहब ने भी मुझे जानकारी दी है कि अभी सीबीआई कोर्ट में शहाबुद्दीन के साथ 6 अन्य आरोपियों पर चार्जशीट फाइल की है।
का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम एकमात्र भारतीय नागरिक है जो यूके द्वारा जारी वित्तीय प्रतिबंधों की अपडेटेड लिस्ट में शामिल है। फाइनेंशियल सैंक्शंस टारगेट्स इन द यूके नाम से जारी लिस्ट में माफिया डॉन के पाकिस्तान स्थित 3 ठिकानों और 21 उपनामों का भी जिक्र किया गया है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 5 विधायकों ने केरल विधानसभा में भूख हड़ताल शुरू की है। ये सभी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा पर लगे भाई भतीजावाद के आरोपों पर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में एक खौफनाक हत्याकांड कैमरे में कैद हुआ है। अपनी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध रखने के शक में आरोपी ने हाथापाई के बाद दूसरे व्यक्ति पर पिस्तौल से गोली चला दी। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक चौंकाने वाली घटना के तहत बीसीके के पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जन्मदिन समारोह के लिए पैसा न देने पर एक दुकान मालिक पर हमला कर दिया। वेल्लोर में बीसीके प्रमुख तिरुमा वल्लवन के जन्मदिन के एक दिन पहले हुई ये घटना कैमरे में कैद हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, फेसबुक के प्रबंध निदेशकों, गूगल और याहू को नोटिस जारी किया है कि उन्होंने ब्लू व्हेल चैलेंज को रोकने और साइटों को ब्लॉक करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 19 सितंबर तक का वक्त दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 2 नाबालिग बहनों पर पुरुषों के एक समूह ने तब एसिड से हमला कर दिया जब वो सो रही थी। फिलहाल लड़कियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के बाहरी इलाके में एक 4-सीटर ऑटो की लॉरी से टक्कर होने के बाद 6 यात्री मारे गए और 4 के घायल होने की खबर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गूगल प्ले और एप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज़ रेडियो।